पृष्ठ संख्या 154। हम देख चुके हैं कि इस्माइली संप्रदाय एक अप्रधान और गौण संप्रदाय था तथा अब्दुल्ला बिन मैमून अल-कद्दाह ने उसमें नवीन प्राण का संचार किया। प्रारंभिक इस्माइली संप्रदाय से अब्दुल्ला बिन मैमून ने केवल इस्माइली नाम भर लिया और उसके सिद्धांत तथा विकास का श्रेय उसी को है। उसने जिन सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की उन्हीं का आधार लेकर इस्माइलियों के अन्य उप संप्रदाय गठित हुए। हम यह भी देख चुके हैं कि इस्माइलियों के लिए कई उप संप्रदाय सनातन पंथी इस्लाम से इतना अधिक अलग चले गए और ऐसे सिद्धांतों का प्रचार करने लगे जिन्हें इस्लामी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनमें से अधिकांश का अंत उन्हीं कारणों से हुआ। बहुत लोगों का कहना है कि अब्दुल्ला ईरानी था, अतएव उसके मन में अरबों के प्रति घृणा का भाव था और प्रकारांतर से इस्लाम की विरोधी भावना भी उसके मन के भीतर काम कर रही थी। उसने अनुभव किया कि इस्लाम के आविर्भाव से अरबों की प्रतिष्ठा बढ़ी है और ईरान की प्रतिष्ठा मिट गई है, अतएव उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लेकिन बहुत लोग इसे स्वीकार नहीं करते। चाहे जो हो, इतना सही है कि सनातन पंथी इस्लाम से उसके सिद्धांतों का बहुत मेल नहीं है। 7 और 12 इमामों की संख्या का आधार लेकर इस्माइली सिद्धांत बने हैं। उनका कहना है कि संसार में विशेष रूप से 7 की संख्या और उससे कुछ कम 12 की संख्या का प्रभाव दिख पड़ता है। वे कहते हैं कि इन्हीं संख्याओं का अनुसरण प्रकृति के बहुत से व्यापारों में किया गया है। जैसे ग्रह 7 हैं तो राशियां 12 हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो साल में 12 महीने आदि। इस्माइली सिद्धांत के अनुसार परम सत्य का ज्ञान मनुष्य के लिए सहज उपलब्ध नहीं है। उस ज्ञान को वह अपने आप ही प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे विवेक बुद्धि की आवश्यकता है, जो एक देशीय नहीं है वरन सार्वलौकिक है। इस सार्वलौकिक विवेक बुद्धि का आश्रय पाकर ही वह उस परम तत्व को जान सकता है। यह बुद्धि भी तालीम द्वारा ही उसे हासिल होती है। यह तालीम पृष्ठ संख्या 155 अथवा पथ प्रदर्शन समय समय पर आने वाले पैगंबरों द्वारा ही संभव है। युग की आवश्यकताओं तथा उस काल में मनुष्य की ज्ञान शक्ति के विकास के अनुसार ही पैगंबरों या नातिकों का आविर्भाव होता है। इस प्रकार के 6 पैगंबर हो चुके हैं। उन पैगंबरों के नाम इस प्रकार हैं: आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद। 7वें तथा अंतिम पैगंबर मोहम्मद बिन इस्माइल हैं। उन्होंने ही पहले पहल ईश्वरीय ज्ञान के भीतरी रहस्यों को प्रकट किया है। प्रत्येक पैगंबर या नातिक के बाद 7 इमाम होते हैं, जिनमें पहला उस सच्चे ज्ञान को नातिक से पाता है। मोहम्मद बिन इस्माइल से ज्ञान प्राप्त करने वाले इमाम अब्दुल्ला बिन मैमून अल-कद्दाह हैं। यह पहले ही हम देख चुके हैं कि इस्माइली भी कई संप्रदायों में विभक्त हो गए थे। उन सबकी चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं है। कुछ ऐसे शिया संप्रदाय हैं जो सीमा का अतिक्रमण कर गए हैं। वे गुलात के नाम से प्रसिद्ध हैं। शहरिस्तानी ने ली ही प पृष्ठ 311 बतलाया है कि उनके 4 मुख्य सिद्धांत हैं जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध पढ़ते हैं। ये 4 पुनर्जन्म, अवतारवाद, परमात्मा में मनुष्य के रूप का आरोप और इमाम का पुनः लौटना है। इन संप्रदायों में नुसैरी, द्रुज, करमती आदि ऐसे हैं जिनके सिद्धांतों से स्वयं शिया संप्रदाय वाले घबरा उठते हैं। 12 इमामों में आस्था रखने वाले शिया संप्रदाय के अनुयायी ही संख्या में अधिक हैं। ये उपर्युक्त संप्रदायों के समान सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। दूसरी छोर पर शिया संप्रदाय के अंतर्गत जैदी हैं, जो सुन्नियों के बहुत निकट आ जाते हैं। ये अन्य शिया संप्रदायों की तरह अदृश्य इमाम, तकिया आदि में विश्वास नहीं करते। प्रायः सभी शिया संप्रदाय सूफियों के कट्टर विरोधी हैं। उमैया खलीफों के काल में एक ऐसे सिद्धांत के दर्शन होते हैं जिसका धार्मिक क्षेत्र में गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। यह मुतज़िला का सिद्धांत था। इस सिद्धांत की तार्किकता और विचार स्वातंत्र अभूतपूर्व थे। पृष्ठ संख्या 156। इसके आविर्भाव की कहानी बड़ी अद्भुत है। कहा जाता है कि हसन अल बसरा से जब यह पूछा गया कि धर्म पर ईमान लाने वाला व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे तो उसे धर्म पर ईमान लाने वाला व्यक्ति कहा जाएगा या उसे धर्म से च्युत माना जाएगा। खारिजियों के कारण उस काल में यह प्रश्न बड़े महत्व का हो गया था। हसन अभी इस प्रश्न पर विचार ही कर रहे थे कि उनके शिष्य वासिल बिन अता अल गज़ाल ने फौरन जवाब दिया कि वह व्यक्ति न धर्म से च्युती माना जाएगा और न उसे ईमान लाने वाला ही माना जाएगा। उसकी स्थिति इन दोनों के बीच की होगी। यह वासिल ईरान का रहने वाला था। एक दूसरी परंपरा के अनुसार इस शिष्य का नाम अमर बिन उबैद था। चाहे जो हो, जिस मस्जिद में ये लोग थे उसके एक दूसरे हिस्से में जाकर वह अपने मत की व्याख्या करने लगा। इस पर हसन ने कहा कि वासिल हमसे अलग हो गया है। उस समय हसन ने जो यह कहा इतजला अन्ना, तो वासिल के विरोधियों ने उसे अल मुतजला कहना प्रारंभ किया। इतजला अन्ना का अर्थ हम लोगों से फर्क हो जाना है। इस्लाम धर्म के ज्ञाता भारतीय विद्वानों का मत है कि वासिल स्वयं हटकर नहीं गया बल्कि वहां से हटा दिया गया। इब्न खलिकान का भी मत है कि वह निकाल दिया गया। ऐसी हालत में मुतजला शब्द का प्रयोग ठीक है। उनकी दृष्टि में मुतजिला शब्द का प्रयोग उसी हालत में ठीक है जब यह माना जाए कि वासिल अपनी इच्छा से चला गया। स्पीई पृष्ठ 493। इस कहानी की ऐतिहासिकता पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इससे इतना पता चल जाता है कि मुतजिला सिद्धांत का जन्म बसरा में हुआ। मुतजिला सिद्धांत का आधार तर्क है। प्रारंभ में सनातन पंथी इस्लाम से इसका दो बातों में गहरा मतभेद है। मुतजिला सिद्धांत के मानने वाले परमात्मा में किसी सिफत गुण का आरोप करने के लिए तैयार नहीं होते। परमात्मा में शक्ति, ज्ञान, प्राण शक्ति आदि गुणों का आरोप करना, पृष्ठ संख्या 157, मुतजिला सिद्धांत के अनुयायियों की दृष्टि में परमात्मा के एकत्व को खर्वित करना है। उनका कहना है कि इन गुणों का शाश्वत मानना एकेश्वरवाद के सिद्धांत का विरोध करना है। मुतजिला सिद्धांत के मानने वालों के अनुसार सनातन पंथी परमात्मा के जात और सिफत को अलग मानते हैं और कहते हैं कि ये दोनों अलग किए जा सकते हैं। इस बात को मुतजिला सिद्धांत वाले स्वीकार नहीं करते। इस बात पर भी वे आपत्ति करते हैं कि सनातन पंथी कुरान को अनादि और अनिर्मित कहते हैं। वह मनुष्य की कृति नहीं है, उसका नाश नहीं होता। मुतजिला सिद्धांत वाले सनातन पंथियों के इस मत को एकेश्वरवाद का विरोधी मानते हैं। सनातन पंथियों से इस बात में भी उनका मतभेद है कि मनुष्य के भाग्य को परमात्मा ने पहले से ही स्थिर कर रखा है तथा अच्छा या बुरा कुछ भी करना मनुष्य की अपनी इच्छा पर नहीं निर्भर करता। इस भाग्यवादी दृष्टिकोण का विरोध मुतजिला करते हैं। मुतजिला के मानने वालों का कहना है कि अगर इस बात को स्वीकार किया जाए कि नियति सब कुछ कराती है जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं, और इस प्रकार से किए हुए पापों के लिए परमात्मा मनुष्य को दंड देता है, तो इसका मतलब यह होगा कि परमात्मा निरंकुश, स्वेच्छाचारी और बेरहम है। उनके अनुसार परमात्मा उन कर्मों के लिए किसी को दंड भागी नहीं बनाता जिन पर संसार के प्राणियों का कोई वश न हो। परमात्मा ने बुराई की सृष्टि नहीं की है, इसलिए इन सिद्धांतों को मानने वाले अपने को अहलुल अदल वात तौहीद कहते हैं, जिसका मतलब है कि वे परमात्मा की न्यायप्रियता और उसके एकत्व पर ईमान लाते हैं। इस्लाम की प्रथम शताब्दी में नियतिवाद का बोलबाला था। मुतजिला सिद्धांत के मानने वालों ने इसके विरोध में युक्ति दी और अपने मत का प्रतिपादन किया। कुरान को भी वे मनुष्यकृत मानते हैं। उनमें कितने ऐसे थे जिन्होंने कुरान की तरह उसी भाषा का प्रयोग कर ग्रंथ लिखे। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वे दिखला दें कि वैसी भाषा और वैसे ग्रंथ, पृष्ठ संख्या 158, की रचना मनुष्य के लिए संभव है और उसमें किसी प्रकार के दिव्यत्व अथवा अलौकिकता का आरोप निरर्थक है। मोटे तौर पर मुतजिला का सिद्धांत निम्नलिखित है। परमात्मा अनादि और अनंत है, उसके जात और सिफत अभिन्न है। उसके हाथ, पांव, मुंह, आंख आदि का प्रयोग केवल रूपक के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कुरान का वक्तव्य ही प्रधान है, उसकी भाषा को अलौकिक कहना कुछ अर्थ नहीं रखता। परमात्मा न्यायी है और वह मनुष्य के साथ न्याय का व्यवहार करता है। परमात्मा बराबर भला ही करने वाला है, बुरे कर्म का दोष उसके मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता, वह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य के भले बुरे कर्मों का दायित्व तो मनुष्य पर है। ज्ञान बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है। नियतिवाद का सिद्धांत गलत है। धर्म के भीतरी तत्वों को बिना समझे बूझे मानने का कोई मतलब नहीं। परमात्मा के सिवा सभी वस्तुएं नाशवान हैं। वली के सिद्धांतों को वे नहीं मानते। उनका कहना है कि इसका मतलब किसी विशेष व्यक्ति को दूसरों से ऊंचा मानना है। उनके मतानुसार जो काम एक मुसलमान कर सकता है उसे दूसरा मुसलमान भी कर सकता है, अतएव किसी विशेष व्यक्ति को अलौकिक गुणों से संपन्न क्यों माना जाए। वे यह नहीं मानते कि कयामत के दिन परमात्मा के दर्शन होंगे और न यही मानते हैं कि परमात्मा और मनुष्य के बीच किसी मध्यस्थ की जरूरत है। मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। मुतजिला के अंतर्गत और कई संप्रदाय गठित हो गए, जैसे वासीलिया, हुजैलिया, नजामिया आदि जिनके ब्योरे जाना हमें अभीष्ट नहीं है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि मुतजिला सिद्धांत अब्बासी खलीफा मामून सन 813 ईस्वी से सन 833 ईस्वी तथा उसके पुत्र खलीफा अल वासिक सन 842 ईस्वी से सन 847 ईस्वी के काल में अत्यधिक शक्तिशाली था। वह एक प्रकार से राजधर्म स्वीकार कर लिया गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मुतजिला सिद्धांत विचार स्वातंत्र का पृष्ठ संख्या 159 पक्षपाती था और कट्टरता का विरोधी था, वही धर्म और सिद्धांत के नाम पर दूसरों पर अत्याचार करने का जरिया बन गया। खलीफा अल मामून ने मुतजिला सिद्धांत के विरोधियों को सजा देने के लिए व्यवस्था की है। बहुतों से इसने स्वीकार कराया है कि कुरान मनुष्य कृत है और इसे नहीं स्वीकार करने के कारण बहुतों को सजा भुगतनी पड़ी। अहमद बिन हनबल उन 24 प्रमुख और संभ्रांत मुसलमानों में थे जिनके सामने कुरान संबंधी इस प्रश्न को रखा गया कि वह अनादि है या मनुष्य द्वारा निर्मित। उनमें से अधिकांश ने भय के मारे स्वीकार कर लिया कि वह मनुष्य कृत है, लेकिन हनबल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हनबल सुन्नियों के चार सनातन पंथी संप्रदायों में एक के प्रवर्तक थे। मामून की अचानक मृत्यु हो गई, नहीं तो यह कहना मुश्किल है कि हनबल की कैसी गति होती। इसी प्रकार से अपने पिता की नाई खलीफा अल वासिक ने मुतजिला के सिद्धांतों का प्रचार किया। कुछ कैदियों को एक बार उसने इसलिए मुक्त कर दिया कि वे कुरान को मनुष्यकृत मानते हैं और इसमें विश्वास करते हैं कि कयामत के दिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जिन लोगों ने इसे नहीं माना उन्हें उसने फिर से जेल में भिजवा दिया। तवारी ली ही पर पृष्ठ 285। मुतजिला सिद्धांत के मानने वालों के दो केंद्र बसरा और बगदाद थे। मुतजिलों के शास्त्रीय और दार्शनिक विवेचन आम मुस्लिम जनता को आकर्षित नहीं कर सके। उनका ह्रास खलीफा मुतवक्किल के शासन काल में होने लगा। मुतवक्किल सन 847 ईस्वी से सन 861 ईस्वी ने फिर से सनातन पंथी कट्टरता की प्रतिष्ठा की और मुतजिला सिद्धांत का दमन किया। 10वीं शताब्दी के मध्य में अबुल हसन अल अशारी ने सनातन पंथी सिद्धांतों की खामियों को दूर करते हुए मुतजिला सिद्धांत का विरोध किया। उसने जिस कट्टरता का प्रतिपादन किया वह आज तक चली आ रही है। अशारी पहले मुतजिला सिद्धांत का ही मानने वाला था, लेकिन पृष्ठ संख्या 160 बाद में वह उसका विरोधी हो गया। वह जब 40 वर्ष की उम्र का था तब उसने विरोधी दल को अपनाया और समस्त जीवन मुतजिला सिद्धांत का विरोध करता रहा। तर्क करने की शक्ति तथा अनेक युक्तियां उसने मुतजिला सिद्धांत से ही ग्रहण की थीं। लेकिन मुतजिला सिद्धांत बिल्कुल खत्म नहीं हो गया। ईसा की 12वीं शताब्दी में जमखरी इस सिद्धांत का बहुत बड़ा अनुमोदक था। वह कुरान का एक बहुत बड़ा व्याख्या करने वाला था। ईसा की 11वीं शताब्दी में रई अफगानिस्तान में मुतजिला सिद्धांत के अनुयायियों का पता चलता है। महमूद गजनी ने उन्हें वहां से निर्वासित किया और उनके ग्रंथों को जला दिया। मुतजिलों को अन्य मुस्लिम संप्रदायों की तरह कुछ विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई, लेकिन मुतजिला सिद्धांत ने एक दूसरे ढंग से इस्लामी विचारधारा को प्रभावित किया। राजनीति और धार्मिक क्षेत्र में उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहा, लेकिन विचार के क्षेत्र में इसने अपना व्यापक प्रभाव डाला। उस समय के अन्य विचारधाराओं और संप्रदायों को एक नए ढंग से सोचने के लिए इसने मार्ग दिखाया। विचार स्वातंत्र के लिए इसने एक वातावरण तैयार कर दिया। इख्वानुल सफा आदि जैसे दल इसके बाद ही हुए। पवित्र आत्माओं की बिरादरी के नाम से इन्होंने अपना परिचय दिया। ईसा की 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये धार्मिक आचरण को अपनाने वाले व्यक्ति इस काम में लग गए कि धर्म और विज्ञान में सामंजस्य स्थापित किया जाए। उन्होंने अपना एक दल संगठित किया जिसका उद्देश्य था कि वे धार्मिकता, पवित्र जीवन, सत्य आदि के रास्ते पर चलकर परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करें। उन्होंने इस बात की कोशिश की इस्लाम के सिद्धांतों को तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टि से उचित ठहराया जाए। उन सिद्धांतों की विवेचना उन्होंने इसी दृष्टि से की। उन्होंने इस दिशा में जो कुछ किया वह सन 970 ईस्वी फ्लूगेल ली ही पर 292 पर उद्धृत के लगभग 50 ग्रंथों के रूप में प्रकाशित हुआ। उन्होंने इन ग्रंथों में धार्मिक कहानियों पृष्ठ संख्या 161 रूपकों आदि का उपयोग किया। ऐसा करने के पीछे उनका यह उद्देश्य था कि लोगों को उन बातों का पता चले वे ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन से परिचय प्राप्त करें। उनका कहना था कि धर्म के नियमों में बहुत सी बुराइयां इसलिए पैदा हो जाती हैं कि मनुष्य को ठीक ठीक बातों का पता नहीं होता। अज्ञान वश वे बहुत सी गलतियां करते हैं और समुचित ज्ञान के अभाव में गलत चीजों को भी धर्म में शुमार कर लेते हैं। अगर दर्शन आदि से मनुष्य को परिचय प्राप्त हो जाए तो वह अपने आप को पवित्र बना सकता है और अपने दोषों को दूर कर सकता है तथा उनसे बचने में समर्थ हो सकता है। ये लोग बसरा में थे। कम से कम 5 के नाम तो अब भी लोगों को ज्ञात हैं। वे यो हैं: अबू सुलेमान, मोहम्मद बिन मार्शल अल बायूस्ती अथवा अल मुकद्दसी, अबुल हसन अली बिन हारून अज जनजानी, अबू अहमद अल मेहजानी नहजूरी, अल औफी और जैद बिन रियाफा। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग वास्तव में इस्माइली सिद्धांत के प्रचारक थे। ली ही अ, पृष्ठ 371। सनातन पंथी सुन्नियों की 4 प्रमुख शाखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे से प्रायः मिलती जुलती हैं और उनमें आपसी मैत्री का भाव है। ये चारों परस्पर एक दूसरे के इमामों के प्रति सम्मान का भाव रखती हैं और चारों में से किसी भी शाखा के इमाम के साथ उन्हें नमाज पढ़ने में आपत्ति नहीं। ये चारों सनातन पंथी शाखाएं सुन्नी संप्रदाय की हैं, जिसकी संख्या इस्लाम के अन्य संप्रदायों से बहुत ही अधिक है। सुन्नी संप्रदाय वाले ही समस्त संसार में बहुमत में हैं। धर्मशास्त्र की व्याख्या तथा कर्मकांड को लेकर ही ये 4 शाखाएं हुईं। ये 4 शाखाएं अपने अपने संस्थापकों के नाम से ही सुपरिचित हैं। इनमें सबसे पहली और पुरानी शाखा हनीफी है, जिसके संस्थापक अबू हनीफा थे। इनका जन्म सन 700 ईस्वी में हुआ। ये एक ईरानी गुलाम के पुत्र थे। ये एक व्यापारी थे और इस्लामी धर्मशास्त्र में इनका अद्भुत प्रवेश था। इन्होंने अपने मत का प्रचार अपने पृष्ठ संख्या 162 शिष्यों में किया। इनका लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं था। इनके सिद्धांतों का पता इनके शिष्य अबू यूसुफ सन 798 ईस्वी की किताब अल खराज से चलता है। इनकी मृत्यु सन 767 ईस्वी में हुई। धर्माचरण के लिए अथवा धार्मिक कर्मकांड में अनुचित उचित के विचार के लिए इन्होंने हदीस पर उतना जोर नहीं दिया जितना कयास पर। कयास से उनका मतलब तर्क द्वारा व्यापक से व्याप्य के अनुमान से था। उनका कहना था कि धर्म संबंधी नियम कानूनों को विचार कर अमल में लाना उचित है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह समझ बूझ कर अपना रास्ता तय करे। अमीर अली का स्पीई पृष्ठ 101 कहना है कि हनीफा शिया संप्रदाय में दीक्षित थे और धर्मशास्त्र की शिक्षा इन्होंने इमाम जाफर अस-सादिक से ग्रहण की थी। बाद में वे शिया संप्रदाय के विरोधी हो गए। संसार के सुन्नी संप्रदाय की लगभग आधी संख्या हनीफी शाखा में पड़ती है। भारतीय मुसलमानों में अधिकांश इसी शाखा के अनुयायी हैं। मध्य एशिया, तुर्की, अफगानिस्तान, मिस्र आदि में भी अधिकांश मुसलमान इसी शाखा के हैं। लगभग 11 करोड़ 80 लाख मुसलमान हनीफी शाखा के हैं। अन्य 3 शाखाएं मालिकी, शाफी और हनबली हैं। मालिकियों की संख्या लगभग 3 करोड़ है, शाफियों की 7 करोड़ 30 लाख और हनबलियों की 30 लाख है। हनीफी शाखा उदार है और मालिकी शाखा उससे अधिक अनुदार। वे कट्टरता के उपासक हैं। वे हदीस को ही प्रधानता देते हैं। इस कट्टरता और अनुदारता का कारण संभवतः यह है कि इस शाखा का जन्म मदीने में हुआ और इसके प्रवर्तक मालिक इब्न अनास थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पैगंबर के जीवन और सोचने के ढंग से अधिक परिचित थे। हदीसों का हवाला देकर ही किसी कृत्य के औचित्य अनौचित्य पर वे विचार करते थे। उनका जन्म मदीने में सन 713 ईस्वी या सन 714 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 795 ईस्वी में हुई थी। मालिक की मृत्यु पृष्ठ संख्या 163 हारून अल रशीद के काल में हुई। इब्न हल्लकान ली ही पर पृष्ठ 295 का कहना है कि अल मंसूर द्वारा मालिक बड़ी बेरहमी से कोड़ों से पिटवाया गया, क्योंकि खलीफा को संदेह था कि वह अब्बासियों का विरोधी है, लेकिन उससे जनता में उसका सम्मान बढ़ता ही गया। इन दोनों शाखाओं के प्रादुर्भाव के बाद से धर्मशास्त्र का अध्ययन क्रमशः उन्नति करता गया। तीसरी शाखा शाफी के प्रवर्तक मोहम्मद इब्न इद्रीस अस शाफी थे। ये कुरैश वंश के थे। इनका जन्म गाजा सीरिया में सन 767 ईस्वी में हुआ। इसी साल अबू हनीफा के मृत्यु हुई थी। इन्होंने मदीने में अशशाफी से शिक्षा ग्रहण की थी। बगदाद और कैरो ही इनके क्षेत्र थे जहां इनका प्रभाव अधिक था। इनकी मृत्यु भी कैरो में सन 820 ईस्वी में हुई। उस समय खलीफा मामून का शासन चल रहा था। ये न मालिकियों की तरह कट्टर थे और न हनीफियों की तरह उदार थे। इन दोनों के बीच का मध्यम पथ इनका कहा जा सकता है। इनके अनुयायी मिस्र के कुछ हिस्से में भारतवर्ष के उपकूल वाले भाग में, पूर्वी अफ्रीका में, सिंघल में तथा मलाया आदि में हैं। फिलिस्तीन तथा पश्चिमी और दक्षिणी अरब में भी शाफी के अनुयायी पाए जाते हैं। भारतवर्ष के बोहरा लोगों में भी इनके मत के मानने वाले हैं। चौथी शाखा हनबली है। इसके जन्मदाता अहमद इब्न हनबल थे। ये अत्यंत दकियानूस थे। इनके अनुयायियों की कट्टरता और दकियानूसीपन के कारण खलीफा मामून से लेकर उनके बाद के होने वाले खलीफों के शासनकाल तक बहुत अधिक दंगे हुए, बहुत अधिक खून खराबी हुई। ही सा पृष्ठ 277 पाद टिप्पणी 3। वैसे जब इब्न हनबल की मृत्यु हुई तो वे संतों में गिने गए। वर्तमान काल में इनके अनुयायियों की संख्या बहुत कम हो गई है। वहाबियों में ही वे अधिकतर रह गए हैं। ये अश शाफी के शिष्य थे और हदीस का अक्षरशः पालन करने पर जोर देते थे। इब्न खलिकान का कहना है कि शाफी ने मिस्र के लिए रवाना होते समय कहा था कि इब्न हनबल के जैसा धर्म का और धर्मशास्त्र के नियमों का जानकार और व्यवस्थापक बगदाद में कोई नहीं है। ये खलीफा मामून और खलीफा मुतसिम बिल्लाह के धार्मिक दृष्टिकोण का विरोध करते रहे। इनके प्राणों का भी भय था, लेकिन वे अपने सिद्धांत पर डटे रहे। वे अरब जाति के थे। उनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 855 ईस्वी में हुई। बगदाद में ही उनकी मृत्यु हुई। ये चारों इमाम कहे जाते हैं और सुन्नियों की श्रद्धा के पात्र हैं। काल क्रम से जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग इन धर्मशास्त्रों की व्यवस्थाओं और पाबंदियों के कायल होते गए और उनके लिए धर्माचार्यों और धर्मशास्त्रों के जानकारों के वचन ही कानून बन गए। उनकी व्याख्या ही ठीक समझी जाने लगी। न्याय अन्याय, औचित्य अनौचित्य का विचार उनकी दी हुई व्यवस्थाओं और व्याख्याओं के प्रकाश में किया जाने लगा। शरीयत के अनुसार मुसलमानों के जीवन के सभी कारोबार चलते हैं। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों को वे शरीयत के अनुसार स्थिर करते हैं। अपने धर्म वालों के साथ, अपने संप्रदाय वालों के साथ कैसा संबंध रहना चाहिए आदि प्रश्न का हल वे शरीयत से निकालना चाहते हैं। पांच प्रकार के कर्मों का विधान वे सभी के लिए करते हैं। 1. फर्ज, जिसका पालन आवश्यक है, जिसकी अवहेलना से दंड भोगना पड़ता है और जिसके पूरा करने से मनुष्य पुरस्कार का अधिकारी होता है। 2. मुस्तहब, जिसका पालन शुभदायक है लेकिन जिसके नहीं करने से किसी प्रकार का दंड नहीं भोगना पड़ता। 3. जायज, ऐसे कर्म जो उचित हैं उनके लिए दंड या पुरस्कार का प्रश्न कानून की दृष्टि से नहीं उठता। 4. मकरूह, जो अनुचित तो हैं लेकिन जिनके लिए दंड नहीं भोगना पड़ता। और 5. हराम, जिन कर्मों के करने का निषेध किया गया है और जिनके लिए दंड भुगतना पड़ता है। चाहे जो हो, सुन्नियों की कट्टरता उसी काल से पृष्ठ संख्या 165 बनी हुई है और इसी प्रकार से चलती आ रही है। तत्कालीन अरबी और ईरानी समाज की धार्मिक अवस्था के इस संक्षिप्त परिचय से यह समझना कठिन नहीं होगा कि इस्लामी दुनिया में तरह तरह की विचारधाराएँ क्रियाशील थीं। इस्लाम धर्म के अंतर्गत नाना प्रकार के धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। उस काल की विचारधाराओं में कुछ तो ऐसी थी जो स्वाभाविक रूप से इस्लामी देशों में उत्पन्न हुई थी और कुछ बाहरी थी जो इस्लाम धर्म को नाना भाव से प्रभावित कर रही थी। इस संपूर्ण काल में अर्थात ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर ईसा की 11वीं शताब्दी तक अरब, ईरान तथा अन्य इस्लामी देशों की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ एक दूसरे से इस प्रकार उलझी हुई थी कि उनमें से किसी एक को समझने के लिए दूसरी का समझना आवश्यक है। इस्लाम के अंतर्गत कुछ ऐसे संप्रदाय थे जो राजनीति के कारण उत्पन्न हुए, लेकिन बाद में चलकर उन्होंने धार्मिक रूप ले लिया, और कुछ ऐसे थे जो पूर्णतया धार्मिक थे लेकिन वे अपने को राजनीति से अछूता नहीं रख सके। इसी काल में तथा इन्हीं परिस्थितियों के बीच सूफी मत का आविर्भाव और विकास हुआ। अतएव सूफी मत का अध्ययन करते समय इन परिस्थितियों को अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। इन विभिन्न शक्तियों की क्रियात्मकता और गतिशीलता की पृष्ठभूमि में सूफी मत का अध्ययन ठीक होगा।